आवृत्ति करेंगे 21वें अध्याय की पहले श्लोक से चालू करेंगे। श्री शुक उवाच सत्यम समीक्षा जभव नखेन्दु भी हत स्वधाम दुति सत्कृत व्ययात हत स्वधाम दुतिरावृत व्ययात मरीच मिश्रा विषय महाव्रत सुनंद नाद्या नरदेव जोषितः योगिनः वेदोपवेदा नियमामिता जनः तर्के इतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्निनारंधित कर्म कर्म सह भवंदिरे जत स्मरणानुभावतः स्वयं भूम धाम गता अकर्मकम् अथां ह्रये प्रणमिताय विष्णुः उपाहरत पद्मभवोर्हणोदकम् आराम से उच्चारण के लिए आप गैप मत छोड़िए, एक पाठक के बाद दूसरा तुरंत चालू करें। ठीक है, पढ़िए।
हत स्वधाम द्युतिरावृतो व्यगात् मरीच मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः
संहिता ये चापरे जोग समीर दीपिता ज्ञानाग्नि नारंधित कर्म कल्मषः भवं दिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्
अतः स्वधाम धृतिरावृतोऽभ्यगा मरीचिविश्चा ऋषियो ब्रुवद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः
तर्के इतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्नि नारंधित कर्म कल्मषा भवंदिरे यत् स्मरणानुभावता स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्
अतश्वधामादितिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रारिस्तयो बृहद्व्रतः समुन्दनाद्या नरदेवयोगिनः तर्के इतिहास पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्नि नारंधित कर्म कल्मषा
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः
वेदो भवेदानिमान्विताय मा तर्के इतिहासं गपुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्निरन्धित कर्म कल्मषा भवन्दिरयत मरुणा अस्मरणानुभावत स्वयं भुवं धाम गत अकर्मकम्
सत्यं समीचा भगवान् केन्दुवे अतः स्वधामादितिवाभितो भगात् मरीचिसारिषयो बृहद्व्रता
ज्ञानाङ्गिनारन्धितकर्म कर्मशा
श्री सुकल उलाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सत्यम सत्य लोक में समीक्षा देख कर अब जो हवा कमल से उत्पन्न श्री ब्रह्मा जी नखेंदु भी भगवान त्रिविक्रम के नखचंद्र द्वारा हता स्वधाम द्युति जिनके धाम की चमक फीकी पड़ गई अभी तो अनेक योगियों के द्वारा घिरे हुए अभ्ययात ब्रह्मा जी आए मरीचि मिश्रा जिनमें मरीचि मणि मुनि मुख्य थे विषय ऋषि जन बृहद व्रता ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सुनंद नाद्या सनंदन सनातन सनत कुमार आदि नाद्या नरदेवा हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित योगिनः और योगी जन भगवान के भक्त वेदा चारों वेद चार वेद के क्या नाम है ऋग यजुः साम और अथर्व चार वेद हैं और चार ही उपवेद हैं जैसे धनुर्वेद आयुर्वेद ये वेदों के सप्लीमेंटरी ग्रंथ हैं इसको पूरा किया जाता है वेद के सारे भागों को तो ब्रह्मा जी के लोक में वेद उपवेद तर्क इतिहास पुराण आदि सभी देवता के रूप में मूर्तिमान रहते हैं सभी वेद और उपवेद तर्क इतिहास पुराण आदि सभी देवता के रूप में रहते हैं प्रकट सभी ब्रह्मा जी के साथ जुटे ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम की जो चमक है वो भगवान के नख की ज्योति से फीका हो गई है यदि तुच्छ प्रकाश के सामने बहुत बड़ा प्रकाश आ जाए तो छोटा प्रकाश जैसे फीका हो जाता है तो ब्रह्मा जी के धाम में बहुत चमक है लेकिन भगवान के नख चंद्रों के प्रकाश से वो फीका हो गया हत स्वधाम द्युति ब्रह्मा जी के धाम की जो द्युति थी ज्योत्सना थी वो फीकी पड़ गई और ब्रह्मा जी आए भगवान के चरण को देखकर एक द्वितीय चरण एक चरण से भगवान ने नापा है नीचे के लोगों को अतल सुतल बीतल तलातल महातल रसातल पताल आदि सबको नाप लिया एक पैर से और तीसरा पैर बढ़ा भगवान ने तो स्वर्ग लोक का नाप लिया स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक फिर जन लोक फिर तप लोक इसके बाद सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक बलि महाराज के अधीन नहीं था लेकिन भगवान का चरण पहुंच गया वहाँ नापने के लिए वो ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है बहुत दूर तो उस ऊंचाई पर भगवान का चरण पहुंच गया और भगवान के चरणों में जो नख थे वे चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो रहे थे ऐसा लगा कि जैसे पांच चंद्रमा उग गए हो एक साथ बहुत प्रकाश निकल रहा भगवान विराट रूप धारण किए थे नापने के लिए तो उसी हिसाब से उनका शरीर भी बड़ा हुआ और पैर इतना बढ़ा कि सत्यलोक तक चला गया सत्यलोक के बाद कारण समुद्र रहता है कारण समुद्र इस ब्रह्मांड की सीमा के बाहर कारण समुद्र में ही सारे ब्रह्मांड तैरते तो एक ब्रह्मांड की कितनी लंबाई है अगर ब्रह्मांड के बीच में एक रेखा खींची जाए बीच में जिसको व्यास कहते हैं तो एक ब्रह्मांड की लंबाई बीच से 50 करोड़ योजन है 50 कोटि योजन एक योजन 8 मील का होता है 4 कोस का इस हिसाब से एक ब्रह्मांड की परिधि दूसरे परिधि तक जाती है तो इतना चौड़ा लोक है ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर भगवान का चरण पहुंच गया तो सत्यम समीक्षा सत्य लोक में भगवान के चरण कमल को देखकर अब्ज भव श्री ब्रह्मा जी जो अब्ज से कमल से जन्म लिए हैं। अब का अर्थ है जल और ज का अर्थ है जन्म। कमल का जन्म जल से होता है और कमल से जन्म लिए हैं श्री ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल पर श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। तो उन्होंने देखा कि भगवान का चरण आया हुआ है यहाँ, तो चरणों की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ और सभी वेद पुराण इतिहास के साथ देवता जहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में सभी देवता नहीं जा सकते, बहुत शुद्ध है जो हैं, सभी बृहद व्रती ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अखंड ऊर्ध देवता है। ऐसे जो भी नित्य रहते हैं वहाँ, ब्रह्मा जी अकेले नहीं है अपने भान में, भरा हुआ है सभी, और सभी परम उच्च कोटि के ऋषि मुनि वेद पुराण सब रहते हैं। तो सभी से आवृत हो करके सबसे घिरे हुए ब्रह्मा जी आए चरण का स्वागत करने के लिए। भगवान के चरण को उन्होंने देखा कि ये आया हुआ है, तो भगवान के चरणों में सभी लोग प्रणाम किए, भवन गिरे। सभी वंदना किए, जत स्मरणानुभावतः, इसी चरण के स्मरण के प्रभाव से ये सभी लोग ब्रह्मा जी के धाम में गए हैं। ब्रह्मा जी के धाम में जो भी जाए गया है जाता है केवल भगवान के चरणों का स्मरण करने से जाता है, चरणों में प्रणाम करने से। और जिस चरण के प्रभाव से वे ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त किए थे, उसी चरण को ब्रह्मा जी के लोक में आया हुआ देह का सभी वंदना के लिए उपस्थित हुए। और पद्म भव अथान गये प्रमिता या विष्णु, भगवान के उठे हुए चरण को देखकर ब्रह्मा जी उस चरण में अनेक प्रकार से पूजा किए। उपाहर पद्म भव अर्हर बताऊ, बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी पूजा किए चरणों की, और अंत में भगवान के चरणों को धोए। वो ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड में कौवर है, अस्तर है, तो ब्रह्मांड के कौवर को छेद दिया भगवान के नखों में, ब्रह्मांड फट गया, तो उससे स्पिरिचुअल जल गिरने लगा कारण समुद्र का, भगवान के चरणों को धोने लगा। धो करके गिर रहा था तो श्री ब्रह्मा जी उस चरण को, चरण धुवन को कमंडल में रख, यही जल इस पृथ्वी पर आया। राजा भगीरथ की कृपा से, प्रेत तपस्या से वही गंगा जी आई जो सारे जगत को पवित्र करती है। भगवान के चरणों को धो करके वो जल है। ब्रह्मा जी पहले भी कमंडल में जल लिए थे, उन्होंने चरण धोया और ब्रह्मांड का कौवर फटने से कारण समुद्र का जल चूने लगा, तो भगवान के चरणों को धो रहा था, तो श्री ब्रह्मा जी चरण धोन को रखे अपने कमंडल में। यह चरण धोन इतना पवित्र है कि तीनों जगत के जीवों को पवित्र करता है। एक तो स्पिरिचुअल जल आया और दूसरे भगवान के चरणों को धो करके गिरा, इसीलिए और अधिक पावन है। तीनों लोकों को गंगा जी पवित्र करते हैं, ऊपर के लोक में स्वर्ग में और ब्रह्मा जी के लोक से गिरते हैं, स्वर्ग में आते हैं और इसके बाद इस पृथ्वी पर आते हैं और इसके नीचे भी जाते हैं जिनको भोगवती कहते हैं, सुतल अतल तलातल सभी लोकों में जाती हैं और ऊपर के सभी लोकों में गिरती हैं। गंगा जी परम पवित्र, गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता है, यद्यपि गंगा जी के भीतर बहुत से नाले गिरते हैं, मल मूत्र बहते हैं, लेकिन गंगा जी कभी भी अपवित्र नहीं मानी जाती विद्वानों द्वारा, वो परम पवित्र है। शुभारु अशुभ सलिल सब बहाई सुरसरी को अपुनीत न कहई, शुभ और अशुभ जल गंगा जी में गिरते हैं लेकिन गंगा जी का मूल भगवान का चरण है, इतना पवित्र है गंगा जी को कोई भी अशुद्धि उनको अपवित्र नहीं कर पाती है। ऐसा देखा गया है, हमने बनारस में देखा है, बहते हुए आदमी के शव को लोग हटा करके, यहाँ तक कि मरे हुए पशु को हटा करके, मल को हटा करके, गाज को हटा करके लोग गंगा जी के पानी को सिर पर रखते हैं, नहाते हैं, देवता भी गंगा जी के जल को सिर पर रखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रक पर कहीं कहीं लिखा हुआ, विशेष करके महाराष्ट्र में, मेरा भारत महान, तो भारत महान है ही, इसकी महानता का कारण है इस देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म लिए, बहुत बड़े बड़े भक्त जन्म लिए। मनु महाराज ने कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य एतद् देश प्रसूतस्य अग्र जन्मना, इस देश में जो जन्म लिए हैं और श्रेष्ठ जन्म, मनुष्य का जन्म तो लिया है लेकिन मनुष्य में भी जो ब्राह्मण हैं बहुत संस्कारी जीव हैं, इनसे सारे जगत को सीखना चाहिए धर्म की शिक्षा। एतद् देश पशु तस्य सकाशात् अग्र जन्मना स्वम स्वम धर्मम अनुशिक्षे मनुष्या पृथिव्यम सर्वमानव, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सबको अपने धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, वर्ण धर्म आश्रम धर्म भक्ति धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, किससे, जो इस देश में जन्म लिए हैं। इस देश में जन्म मिलना बड़ा कठिन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार, इस भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उनको चाहिए कि वे अपने जन्म को सार्थक करें, भगवान की भक्ति अवश्य करें और इसके साथ दूसरे का उपकार करें, प्रचार करें। मनु महाराज की युक्ति युक्ति बिल्कुल सत्य है, इसी देश में श्री प्रभुपाद जन्म लिए और उन्होंने सारी पृथ्वी पर भगवद्गीता के द्वारा प्रचार किया, बहुत उन्नत जीवन था प्रभुपाद जी का, उनके पिताजी परम वैष्णव थे, मंदिर संस्कार था भक्ति का। ये गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित थे तो श्रील प्रभुपाद जी का पैतृक जो बैकग्राउंड था बहुत उन्नत था, इसीलिए प्रभुपाद जी को बचपन में ही भक्ति का संस्कार मिला। गौर मोहन देव यही चाहते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने और भगवान की कृपा से गुरु भी ऐसे मिले जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त। गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो पिता उन्नत थे और गुरु भी बहुत उन्नत थे, इसलिए प्रभुपाद जी बचपन में ही परम वैष्णव हो गए। भक्ति के संस्कार में थे, भगवान की पूजा करते थे बचपन में। यहाँ तक कि पिताजी ने एक छोटा सा रथ बना करके दिया था, छोटा रथ, वो बच्चों के साथ रथ यात्रा निकालते प्रसाद बांटते थे। एक दिन ऐसा हुआ जो बच्चा कलकत्ता की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में रथ यात्रा निकालता था, वो एक दिन ऐसा समय आया जो संसार के बड़े से बड़े नगरों में रथ यात्रा होता था। तो ये है मनु महाराज की उक्ति, चरितार्थ है, एतद् देश पशु तस्य सकाशत अग्र जन्म न सोम सोम धर्म शिक्षे रहूँ पृथ्व्याम सर्व मैं। सभी मनुष्यों को इस भारत में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ संस्कारी पुरुषों से धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी से सारे जगत में शिक्षा लिया है, सब जगह है गए और अभी भी उनके शिष्य गण सर्वत्र भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जैसे भारत श्रेष्ठ है वह क्यों है, भगवान से संबंध होने का। यहाँ अनेक भगवान के अवतार हुए, अनेक ऋषि मुनि भक्त जन्म लिए, इसीलिए पवित्र भूमि है। इसी तरह से गंगा जी परम पावन है क्योंकि उनका संबंध भगवान के चरण से है, भगवान के चरणों से जन्म लिए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने चरण धोया, तो ऋषियों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्रों में एक मरीचि भी है, मरीचि मिश्रा, मरीचि मिश्रा, मिश्रा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम लोग भारतवर्ष में एक टाइटल देखते हैं ब्राह्मणों में मिश्रा, तो मिश्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति करता है। तो मरीचि जिनमें श्रेष्ठ थे ये सब ऋषि मुनि जुटे और भगवान की चरणों की वंदना की, बबन दिए जत स्मरणानुभाव कर, जिस चरण के स्मरण से, स्मरण के प्रभाव से वे लोग ब्रह्मा जी का धाम प्राप्त किए हैं। और धाम कैसा है, अकर्मकम, कभी भी कर्म वासना में लिप्त व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, जिसके सारे कर्म नष्ट हो गए हैं वही जाता है ब्रह्मा जी के लिए। भगवान की भक्ति करने पर ही कर्माणि निर्जहति किंतु भक्ति भावे, भक्ति करने वाले का कर्म बंधन समाप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के धाम में जो भी गए हैं ये परम भगवत पुरुष हैं, भक्ति करते हैं और जोगी ना जोगी हैं, जोगियों में सबसे श्रेष्ठ जो योगी का अर्थ समझना चाहिए, उसमें भक्ति लगा लेना चाहिए, भक्ति योगी। यही सब गए थे और भगवान के चरणों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए, तो श्री ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा की विविध प्रकार से और चरणों को धोए। पद्म भवन, पद्म भवन का ब्रह्मा जी जो पद्म से हुए हैं, पद्म से जिनका जन्म हुआ, अरहरों का भगवान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा के लिए जल इकट्ठा किए कमंडल में, तो जल कारण समुद्र का जल था। समर्थ भगवान के चरणों की पूजा करने के बाद वे भगवान के चरणों की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बड़े ही शुद्ध व्यक्ति हैं, सीते सेवा है, उनका जस परम पवित्र है। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के गुणों को गाने लगे, चरणों की स्तुति करने लगे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भगवानु प्यारे, जो भी वे जानते थे स्तुति करने लगे। समर्थ भक्त्या भक्त्या भेदना सुचिर वर्त सुश्रवा जन्ना भी पंके और संभव स्वयं, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कि जिस भगवान से जन्म लिए हैं उनकी स्तुति करने लगे। धातु कमंडलू जलम तदु क्रमश ब्रह्मा जी के कमंडल में जल इकट्ठा हुआ भगवान के चरण भगवान से, पादा नेजन पवित्र तरा मगन दे, पाद और नेजन जो चरण धोया गया उस चरण का ध्रुवन ब्रह्मा जी रखे अपने इकट्ठा कर परम पावन जल। वही जल तीनों लोगों में गिरता है, तीनों लोगों के जीवों को पवित्र करता है। ऐसा लगता है कि भगवान की विशद कीर्ति है। गंगा जी क्या है? गंगा जी भगवान की कीर्ति है, विशुद्धा कीर्ति है। ये तीनों लोगों में बहती हैं, सब जगह जीवों को अवसर देती हैं नहाने का पीने का, और जो दूर देश में हैं वे भी पवित्र होते हैं केवल गंगा गंगा कहने से, नहाते समय या कभी जय गंगे अगर कोई करे तो पवित्र होता है। भले नल पर नहा रहा है, कुआं पर नहा रहा है, लेकिन गंगा जी का जरूर स्नान करना चाहिए। तो कभी भी तब व्यक्ति पवित्र होगा, केवल जल से दुर्देश के जल से स्नान करने से वो पवित्रता नहीं आएगी। जो पवित्रता गंगा जी का स्मरण करने से आएगी, गंगा उच्चारण करने से, शब्द बोलने से आएगी पवित्रता। ये मैं शास्त्र की बात करता हूँ, जो भी व्यक्ति दूर से गंगा गंगा है कहता है तो ये कहते हैं उसके पाप भस्म हो गए। क्योंकि गंगा जी का इस प्रकार से स्मरण कोई करेगा तो उसको ये बात जरूर याद आएगी भगवान के चरणों से गंगा जी आएगा, तो भगवान के चरणों का स्मरण आएगा, गंगा जी का आएगा, तो पाप निश्चित नष्ट होगा। स्वयं ब्रह्मा जी जिस नाभि कमल से जन्म लिए हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को रखा, चरण धवन पर रखा, और जब राजा सदर के पुत्र मर गए, भस्म हो गए, तब भगवान कपिल देव ने बताया कि केवल गंगा जल से तर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए तुम गंगा जी को लाने का प्रयास करो। उस समय समंदर से राजा थे, उन्होंने बहुत भारी तप किया लेकिन गंगा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। अंत में श्री भगीरथ जी तपस्या की, वे गंगा जी के लिए तपस्या की, तो गंगा जी प्रकट हुए उनके सामने आकाश में, और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी लेकिन दो शर्त है, एक तो शर्त है कि हमारा वेग, हमारा फोर्स, जब मैं ऊपर से गिरूंगी तो मेरे फोर्स को कोई ध्यान करने वाला होना चाहिए, और दूसरा एक शर्त रखा कि हम पवित्र रहेंगे, हमें दुनिया भर के लोग आएंगे, एक से एक पापी सब हमने स्नान करेंगे तो मैं गंदा हो जाऊंगा, उनका पाप धोना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो भगीरथ जी ने कहा, तपस्या किया भगवान शंकर की, तो प्रसन्न हो गया, वे भगवान के चरण धवन को गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार हो गए, तो ठीक है मैं रोकूंगा, जब गंगा जी गिरेंगी तो मैं रोकूंगा। तो एक समस्या तो हल हो गई, और दूसरी समस्या थी गंगा जी अपवित्र न हो, गंगा जी डर रही थी कि हमने सब पापी आ करके स्नान करेंगे तो मैं अपना पाप कहाँ भरूंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा। तो भगीरथ जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माता जी, सब तरह से भक्त लोग, भगवान कृष्ण के भक्त अपने स्नान करेंगे, तो वैष्णवों के स्नान करने से आपका पाप धुल जाएगा, तब गंगा जी तैयार हो गए। बहुत प्रसन्नता के साथ वे आकाश से गिरी, पहले स्वर्ग में आई, स्वर्ग से धारा ब्रह्मलोक से धारा खून हो गई, स्वर्ग में उनका नाम है मंदाकिनी और इस पृथ्वी पर उनका नाम है गंगा जी और पाताल में भगवती नाम है, तीन धारा है, तो तीनों लोगों को अपवित्र करते हैं। बहुत महिमा है गंगा जी, इसी तरह से मुझे याद आ रहा है कि भारतवर्ष की भी महिमा है, भगवान के अवतार के कारण शुरू से ही भगवान का अवतार होता है। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा कि भगवान भारतवर्ष में क्यों आते हैं, दुनिया तो बहुत दुर्ध तक है और मनुष्य जन्म लेते हैं लेकिन भगवान जब आते हैं तो भारतवर्ष में क्यों आते हैं। मैं समझाया, मैं कहा कि भारतवर्ष में इसलिए जन्म लेते हैं कि यहाँ उनको माता पिता मिल जाते हैं, भगवान से प्रेम प्रेम करने वाले लोग हैं, भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते हैं स्नेह से, जैसे हम अन्य बच्चों को प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं गोद में, ऐसे भक्तों को इच्छा होती है कि हम कृष्ण को अपना पुत्र बना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो भारतवर्ष में ही ऐसे भक्त मिलते हैं जो भगवान को अपना पुत्र बनाने वात्सल्य भाव से भजन करते हैं, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। सब लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, भगवान बड़ा व्यक्ति है, वो रहीम है, रहम करता है, बहुत कृपालु है। ये तो ठीक है, भगवान का गुण है, लेकिन भगवान हमारा पुत्र भी बने, हम उनको प्रेम करें हृदय से, ये भाव केवल इस भूमि में है, भारतवर्ष में। शुरू से ही महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, तो प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध्व, अग्निध्व के बाद उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि बहुत बड़े राजा थे, नाभि के मन में यह इच्छा थी कि भगवान विष्णु को मैं अपना पुत्र बनाऊं, ये हमारे घर जन्म गए। तो इसके लिए नाभि महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत शुद्ध ब्राह्मणों से, वे इतने प्रभावशाली ब्राह्मण थे कि उन्होंने यज्ञ में मंत्रों से भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान से डायरेक्ट बात नहीं कर पाए नाभि महाराज, वे संकोच कर रहे थे कि मैं विश्व के ईश्वर श्री भगवान को अपना पुत्र बनने के लिए कैसे कहूँगा, लज्जा आ रही थी। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए यज्ञ में तो ब्राह्मणों ने कहा, बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं, उसने कहा कि हे प्रभु, ये राजा साहब चाहते हैं कि आपके समान कोई पुत्र होगा, इनको पुत्र की इच्छा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके समान कोई पुत्र न हो जाए। तो भगवान इतने रिझ गए, उन्होंने कह दिया दूसरा कहाँ से खोजूंगा, मैं ही पुत्र बनूंगा। तो श्री भगवान स्वयं ही पुत्र बन गए, उनका नाम हुआ ऋषभ। वे मनुष्य में श्रेष्ठ थे, महान थे, बहुत सौंदर्य था, ज्ञान था, और राजा के सब गुण थे, तो वे स्वयं ही पुत्र बन गए। उनका नाम हुआ ऋषभ देव। राजा नाभि अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे, और जब ये बालभक्त में आए, मतलब जब बच्चा युवक हो गया, तब अपनी इच्छा से ही राज्य दे करके बच्चे को वो चले गए बद्रिकाश्रम अपनी पत्नी के साथ, वानप्रस्थ ले लिए और भगवान की भक्ति में रहने लगे। अंत में उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया, वैकुंठ धाम, और राजा बने ऋषभ देव। ऋषभ देव इतने अच्छे शासक थे, उनकी शासन पद्धति को देखकर इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ईर्ष्या करके इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो भगवान ऋषभ देव अपने योग बल से स्वयं वर्षा किए, बहुत बढ़िया वर्षा हुई, और उनके पुत्र सौ हुए। इंद्र बड़ी लज्जा में पड़ गए, अंत में भगवान का विवाह किए अपनी पुत्री से, जिसका नाम जयंती था। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव के, उसमें 9 भूखंड भारत खंड के राजा हुए। भारत खंड मतलब जो भारत के राज्यों के राजा, 25 मिनिस्टर जैसा, तो बहुत बड़े बड़े राजा हैं। और 9 पुत्र बिल्कुल विरक्त हो रहे, ब्रह्मचारी हो रहे, केवल भगवान की भक्ति करते थे, प्रचार करते थे। और ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया, भारतवर्ष। और 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए, तपस्या के बल से, विद्या के बल से, वे इतनी सुंदर पढ़ाई किए और तपस्या करते थे, इंद्रिय संयम रखते थे, तो तपस्या के बल से और विद्या के बल से ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय थे लेकिन 81 बेटा ब्राह्मण हो गए। तो ये प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति उचित गुण अर्जन करके ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के ही कुल में जन्म लिया कोई जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। यह उदाहरण है भागवत के पंचम स्कंध में। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान को अपना बेटा मानने वाले लोग इसी देश में होते हैं, इसीलिए भगवान यहीं पर जन्म लेते हैं। अगर माता पिता मिले नहीं तो जन्म कहाँ से लें। केवल यह कहकर कि हे भगवान हमको हमारा डेली भोजन दिया करो, चर्च में जाए, मंदिर में जाए और केवल यही मांगिए कि हमको भोजन दिया करो। भोजन तो दे ही रहे हैं लेकिन हमको हमारा डेली भोजन दिया करो, ये कहा जाए तो ये भगवान की वास्तविक पूजा नहीं हुई। अच्छा है भगवान के मंदिर में जाना लेकिन भगवान से इस तरह से मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं बल्कि देना चाहिए। कोई कुछ भी भगवान को ले जाए, फल फूल और सुगंधित अगरबत्ती, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भगवान से प्रेम करे तो भगवान क्यों नहीं प्रेम करेंगे। हम लोग तो उनको कृपालु कहते हैं, दयालु कहते हैं, हे ईश्वर हमारा दुख हर लो, हमें विद्या दो, हमें ज्ञान दो, यही कहते, केवल मांग रहे हैं। सभी लोग इस संसार में मांगते हैं, भगवान उसका बेटा कैसे बनेंगे। जो कुछ देने की इच्छा रखेगा, प्रेम करेगा भगवान से, भगवान को अपने से छोटा मानेगा, पुत्र मानेगा, तब भगवान पुत्र बनेगा। जैसे माँ यशोदा का पुत्र बना, अपनी माता से जन्म ले करके यशोदा के पास आया, कितना प्रेम है। जन्म मथुरा में लिए और अपनी ही इच्छा से अपने पिता को कह करके कि हमको ले चलिए गोकुल पहुँचाइए, और गोकुल आ गए। गोकुल में भगवान बिल्कुल सुख से थे, जो इच्छा होती थी वही खाते थे। इच्छा होती थी गोपियों को कि भगवान कृष्ण हमारे घर में खा आकर के खाता, तो सबकी रुचि रखने के लिए वो जाने लगे घर घर में और यहाँ तक कि चोरी करके माखन खा जाते थे, कहीं दूध पी जाते थे, कहीं दही खाते थे, उन्हीं के लिए सब था, इसीलिए वो उसको लेते थे। तो अपनी ही वस्तु को चाहे कोई चोरी से ले या चाहे दान देकर ले, ये कोई दोष नहीं है। भगवान प्रेम की भावना को पुष्ट करने के लिए घरों में चोरी करते थे अनेक उपाय से, कभी सखाओं के कंधे पर चढ़ करके मटका उतारते थे और बिल्कुल ताज़ा माखन खाते थे, कभी घी पी जाते थे, कभी दूध नया दूध बिल्कुल औंटा हुआ, गोपियाँ ऐसे रख देती थी, मातृभाव वाली गोपियाँ, और भगवान उसको जा करके पी जाते थे। दही सजाव दही उसको खा जाते थे। अरे कार्य भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, उनके और भी बहुत से नाम हैं, विश्वम्भर, श्रीपति, केशव, गोविंद, गोपाल, बहुत नाम हैं, लेकिन भगवान को ये नाम बहुत प्रिय है, माखन चोर। कभी कभी वो रंग हो जाते थे, बलराम जी के सामने जब बहस करते थे गाय चराते थे तो बलराम जी कह देते थे, हाँ हाँ तुम्हारी सब महिमा में जानता हूँ, चोर कहीं तुम्हारा नाम ब्रज में सर्वत्र विख्यात है। और दामोदर कह करके अपमान करते थे, जिसकी माँ जिसके कमर में रस्सी बांधी है, जो उखल में बांधा गया, वो तुम बनते हो मैं सब जानता हूँ, क्यों उखल में बांधा गया, तुम्हारे कमर में उदर में रस्सी बांधी माँ दशोदा, क्यों किस लिए, तुम्हारे गुण से तुम चोरी चोरी करते थे, मटका फोड़ दिए थे, दही का मटका फोड़ दिए थे, इसीलिए माँ। तो कभी कभी अपमान में बलराम जी कहते थे दामोदर, हाँ वो तो मैं जानता हूँ तुम तो दामोदर। भगवान फिर रूस करके कहते थे, तब ठीक है तुम गाय चराने जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। बलराम जी कह देते थे, हाँ तुम जाओ कहीं चोरी करने जाओ, माखन चोर कहीं। अच्छा कोई सखा कभी कभी ये बोल देते थे माखन चोर, तो कृष्ण उस दिन दिन भर खुश नहीं रहते थे, रंज रहते थे, आकर जो सदा से कहते थे सब हमारे पीछे पड़े, यहाँ तक कि हमारा भाई बलराम भी उनसे मिला हुआ है। तो श्री यशोदा बलराम जी को डांटती थी, तुम कृष्ण को ऐसे बोलते हो, तो बलराम जी कहते थे मैया मैं तो मजाक करता, तो डांटती थी ऐसे मजाक मत किया करो, आज दिन भर खाया नहीं, उदास है। इसलिए बलराम जी ने कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सज्जन हो जाए तब इसका विवाह हुआ भी होगा, नहीं तो इसको चोर समझेंगे लोग और इसकी ये हरकत जानेंगे तो विवाह कैसे होगा। तब माँ यशोदा समझाती है, तुम सज्जन बनो, ठीक से रहो, तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है, अगर शामिल हो रही है, कहीं पता लग जाएगा सबको कि तुम इस तरह से बदमाश और चोर हो तो विवाह कट जाएगा। तब भगवान कान पकड़ते कि आज से मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो तो आदत है भगवान, तो माखन चोरी करते ही थे। तो इस तरह भगवान से प्रेम करने वाले लोग जा रहे हैं वहीं वहीं भगवान पुत्र बनेंगे ना। नंद महाराज पुत्र बनाना चाहते थे भगवान, देवकी वसुदेव तपस्या किए थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके समान पुत्र चाहते। तो भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए। राजा दशरथ भी ऐसे ही तप किए माता कौशल्या के साथ, तो भगवान श्री कौशल्या जी के पुत्र बने। लेकिन भगवान कृष्ण में और राम में स्वभाव को दृष्टि से बहुत अंतर है। भगवान राम बहुत सीधे साधे, बहुत सुशील थे, और भगवान कृष्ण तो नटखट शिरोमणि थे। कभी ठीक से चलते नहीं थे, ठीक से बोलते नहीं थे, टेढ़ी भाषा, कहीं भी किसी को कुछ कह देना। वो ब्रज की गोपियों से हमेशा कहते थे, मैं ज्योतिषी से बात किया हूँ, उसने कहा है कि इसी घर में तुम्हारा विवाह होगा, ऐसे झूठ बोलते थे। लेकिन भगवान जो भी बोले वही परम सत्य है। तो इस तरह से श्री भगवान पुत्र बने, तो मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि भगवान के लिए वात्सल्य भक्ति जरूरी है, तब पुत्र बने। तो ऐसी भक्ति वाले दूसरे देश में नहीं होते हैं, केवल भारतवर्ष में ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। इसीलिए भगवान भारतवर्ष में ही अवतार होते हैं। अभी आपने सुना कि माता अदिति ने पर्व्रत किए, भगवान पुत्र बन गए वामन का। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण जल को रखा धो करके अपने कमंडल में, वही कमंडल का जल गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती है। तीन धाराओं में बहती है। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक धारा गंगा के रूप में ही है। कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है गंगा जी के दर्शन का, स्नान का। ब्रह्मा देव लोकनाथ सोमनाथ स्ना ब्रह्मा जिनमें प्रधान है ऐसे लोकपाल हैं, लोगों का पालन करने वाले इंद्र आदि देवता हैं। भगवान के चरणों की पूजा के लिए बहुत सी वस्तु इकट्ठे की, जैसे तो यही माला जब भगवान विराट रूप संवरण कर लिए, संचित आत्मविभूत अपने स्वर्ग को छिपा दिए और अपने ओरिजिनल रूप में हो गए वामन रूप में, तब ब्रह्मा आदि लोकपाल तीन वरुण आदि देवता और ब्रह्मा जी आए बड़ी महिला के यज्ञ में, जहाँ भगवान वामन गए थे। भगवान कभी भी कोई रूप बना सकता है, जब भूमंडल नापना हुआ तो उतना बड़ा रूप बनाए, अब पुनः अपने असली रूप में आ गए वामन रूप में। अर्जुन ने भी देखा था भगवान का विश्व रूप, तो अर्जुन को विश्व रूप भगवान ने दिखाया तो वे डर गए, उनको बड़ी घबराहट हुई, ये कौन है, ये आदमी को कच कच खा रहा है। और देखे कि महाभारत युद्ध में जो लोग जुटे हैं, विपक्ष के वीर या अपने पक्ष के वीर, सबको कृष्ण खा रहे हैं, उनके दांतों के नीचे रोटी के टुकड़े की तरह उनकी लाश पड़ी थी। इतना भयावह रूप देखा अर्जुन, फच फच खून गिर रहा था और भगवान चबा रहे थे नृसिंह जैसा, जैसे भगवान नृसिंह जब खा रहे थे असुरों को। हिरण्यकश्यपु की आंत निकाल लिए और इसके बाद असुर लोग जब उन पर टूटे आए उनको मारने के लिए, तो असुरों को पकड़ पकड़ करके खाने लगे, खून पीने लगे, बड़े भयावह लगते थे। तो इसी प्रकार से भगवान विराट रूप में सभी योद्धाओं को मार रहे थे, उनके मुख से आग निकल रही थी। अर्जुन देख करके घबरा रहे, पूछने लगे, घबरा करके पूछते हैं, आख्या इनमें को भगवान देवी को, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं, मुझको बताइए, मैं तो अपने मित्र से बात कर रहा था, लेकिन आप कौन हैं। वो कृष्ण ही थे, लेकिन कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस रूप में नहीं थे। भगवान मूल रूप में कृष्ण है, कृष्ण थे भगवान स्वयं। कैसे श्री वामन देव पहले विराट रूप दिखाए विश्व नापने के लिए, और इसके बाद अपने परम शांत वामन रूप में हो गए। भगवान कभी भी कोई रूप धारण कर सकते हैं, जैसी भक्तों की इच्छा होती है उसके अनुसार। इसके पहले विराट रूप था, पूरे ब्रह्मांड को घिरे हुए, और अब बलि महाराज के स्वर्ण आसन पर बैठ गए छोटा बन करके। तो जब छोटा बन करके बैठ गए तो देवता लोग सब जुट गए, ब्रह्मा जी भी वहाँ आए, आकर के भगवान की पूजा करने। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ऐसे क्यों बने, तो उसका उत्तर है कि भगवान यदि विश्व रूप में रह गए होते तो वहाँ उनकी पूजा कौन करते, इतने बड़े भगवान की पूजा करना असंभव है, इसीलिए छोटे बन गए कि उनकी पूजा की जा सके। देवता सभी मिल करके पुष्प जुटाए, सुगंधित वस्तुएँ जुटाए, जल जुटाए भगवान की पूजा सेवा करने के लिए, उनका चरण धोने के लिए। ब्रह्मा देव लोकनाथा स्वनाथा गणेश, ब्रह्मा आदि लोकनाथ हैं, समस्त लोगों के रक्षक हैं, लेकिन उनके रक्षक हैं भगवान कृष्ण। स्वनाथाय सुना देते, अपने नाथ अपने स्वामी की सेवा कर रहे सामुदा बलनाथ है, अपने अनुगामियों के साथ भगवान को बलि दिए, बलि मतलब पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री लाए। ये पूजा करने में समर्थ है क्योंकि संक्षिप्त आपने जो भूते भगवान की जो भूतियाँ संक्षिप्त हो गई थी, ना स्वर्ग छिपा लिए, साधारण ब्राह्मण बालक के रूप में हो गए। तो यही जल और पूजा की सामग्रियाँ स्वर्ग भी मालाएं दिव्य सुगंध चंदन अग्नि आदि भगवान के ललाट में लेपने के लिए शरीर में लेपने के लिए चंदन प्रस्तुत किए। धूप है दीप है और फिर धूप ऐसा धूप जिसमें बहुत सुगंध थी। तो आज भी हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं और दीप उसके बाद दीप सभी वस्तुएं सुगंधित सुगंधित लादा लावा गंध अमले पहनते हैं और कुछ फल कुछ अंकुर पूजा की सामग्री लेकर के पूजा करने लगे और जय जयकार होने लगा, स्तुति करने लगे देवता लोग गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये स्तुति ब्रह्मा जी गाए है, सब लोग गा रहे थे और जय जय बोल रहे थे, जयकार हो रहा है। स्तोनर जय शब्द तब बीज महिला और भगवान की स्थिति कैसे शब्दों में कर रहे थे, जिन शब्दों में भगवान की अद्भुत महिमा अंकित थी, भगवान की महिमा ब्रह्मा जी की स्थिति में है और भी स्थितियों में वेदों में है। ये सब भगवान की महिमा को अंकित करने वाले शब्दों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। नृत्य बाधित गीत आ गए, नाच होने लगा, देवता लोग नाचने लगे, गीत बहुत अच्छी गीत गाने वाले प्रोफेशनल गायक गंधर्व आदि सब गाने लगा, शंख बजने लगा, बंदूकियां बजने लगी, बहुत आवाज हुई। ये बहुत बड़ा उत्सव होने लगा और जानवान जी जो भगवान राम के सेना में एक वरिष्ठ सैनिक थे, वे उस समय भगवान के महोत्सव में उस समय जवान थे, वामन देव के उत्सव में जवान थे। तो भगवान के इस विजय को देख करके कि सारे जगत को भगवान ने नाच दिया, तो ये सब देवता नाच गा रहे थे, ये दौड़ करके परिक्रमा लगा रहे भगवान उस समय जब त्रिविक्रम बने थे, भगवान जी दौड़ करके परिक्रमा लगाए सात बार, इतने बड़े ब्रह्मांड की भगवान की परिक्रमा की। सहनाई बजा रहे ढोलका भी लेते हैं कि ड्रम बजा रहे थे, ढोलक लेकर के बजा रहे थे और भगवान के विजय की घोषणा कर रहे थे। भगवान विश्व को ले लिए हैं इसकी घोषणा कर रहे हैं। महोत्सव हो रहा था, बहुत बड़ा उत्सव, तो उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जय जय बोल रहे थे, तो जमवान जी परिक्रमा कर रहे थे, सब जगह जा जा करके भगवान के विजय की घोषणा करते थे। ढोलक बजाने पर लोग सुनने के लिए आ जाते थे, क्यों ढोलक बज रहा है, तो जमवान जी इसी में ढोलक बजाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। अब जब भगवान वामन देव के रूप में हो गए, आसन पर बैठ गए, पूजा हो रही थी, तब दैत्यों ने ध्यान दिया। महीम सर्वज हृता दृष्टवा पद व्याध्यान से ऊंचू सौभाग्य दीक्षित जब असुरों ने देखा कि हमारे स्वामी की सारी संपत्ति पद व्याध्यान से ये तीन पद का बहाना करके और छीन ली गई, इस ब्राह्मण ने छीना है, इस समय हमारे स्वामी दीक्षित हैं, जग में दीक्षित, आगे ब्राह्मण को कुछ बोल नहीं सकते, पूजा कर रहे हैं, तो ये देख करके सह नहीं सके। उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को वेतन कौन देगा, जो राजा कंगाल हुआ सब हट दिया गया, ये देख करके कुछ सहन नहीं कर सके और खड़े हुए से मुझे कहने लगे नवा आयम ब्रह्म बंधन, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, नरस नरस मुलाओ से करके ब्राह्मण ना है, नवा आयम ब्रह्म बंध, अरे ये विष्णु है, महामायावी है, बहुत माया जानता है, ये विष्णु है हमारा प्रसिद्ध शत्रु, दैत्यों के भगवान शत्रु हैं, असुरारी हैं, मारते रहते हैं, अरे ये विष्णु है, जब विष्णु विराट रूप में थे तो सभी कांप रहे थे, घबराए थे, अब जब बालक रूप में हो गए हैं वामन देव के रूप में, तब कहें कि अब इसको मारो। नमा आयम ब्रह्म बंधु, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, माया विनान वरा सभी कपटियों में श्रेष्ठ, माया माया जानने वालों में श्रेष्ठ, असली अर्थ है कि ये योग माया जानता है, द्विज रूप प्रतिक्षण ये ब्राह्मण के रूप में आया है छिप करके, देव कार्यों चिकित सके ये देवताओं का काम बनाना चाहता है, छल से आया है, कपट से आया है, इसलिए अनेन यात मानव शत्रु बटु रूप में ये हमारा प्रसिद्ध शत्रु आया है, बटु रूप में विद्यार्थी बनकर के आया है, भिक्षुक बनकर के आया है, बटु रूप में आया और ब्राह्मण का रूप धारण करके हमारे स्वामी का सर्वस्व मृतम सब कुछ हर दिया दंड यज्ञ में किसी की हत्या नहीं करने का कठोर वचन नहीं बोलने का हमारे स्वामी ने व्रत लिया है तो दंड दे नहीं सकते हैं किसी को तो ऐसे स्वामी का सब कुछ हर दिया पहले छोटा छोटा पैर दिखा करके कपटी और इसके बाल इतना बड़ा बन गया सब नाप लिया सारा धन ले लिया सत्य प्रत्यक्ष सत्यम हमारे स्वामी बलि महाराज सत्यवादी हैं सदा सत्य बोलते हैं दीक्षित से विशेष है अभी समय तो जग की दीक्षा लिए है इसलिए और विशेष धर्म पालन कर रहे हैं वे असत्य बोल नहीं सकते किसी ब्राह्मण से ये दयालु हैं लेकिन दयालु स्वामी का और जग में दीक्षित होने का मजाज फायदा उठा रहे हैं तस्मा अस्य बधो धर्म इसलिए इसका वध कर देना धर्म है कितना पता सोचना है जो बलि महाराज जिसकी पूजा कर रहा है सारा जगत अर्पित अर्पित कर दिए उन्हीं भगवान के लोग कहते हैं इसका वध कर देना हमारा धर्म तस्मा अस्य बधो धर्म भरतु सूचना चलना तस्मात इस कारण से अस्य बध इसका वध कर देना हमारा धर्म और यही हमारे स्वामी की सेवा है लोगों ने बहुत खाया है इनका वेतन लिया है नमक खाया है तो इनके प्रति हमारी यही सेवा होगी कि इस ब्राह्मण का वध कर दिया फिर मारने के लिए तैयार हो गए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति आयु ध्यानी जब बड़े रामचरा वे सभी आयुध धारण कर लिए अपना जो भी आयुध था वो यज्ञ हो रहा था लेकिन फिर भी ये अशुभ अपने अपने अस्त्र शस्त्र को ले लिए और यज्ञ में जिसकी पूजा हो रही है उस यज्ञ पुरुष को मारने के लिए हाथ में भाला गणासा सब ले सूर्य पट्टी का सूर्य कहते हैं भाला को त्रिशूल और पट्टिस गणासा जो चौड़ा होता है गला काटने के लिए तो भाला गणासा सब ले लिए मारने के लिए भगवान सब समय सभी ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं उनके पार्षद उनकी सेवा करते हैं भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं तो भगवान के पार्षद कभी प्रकट रहते हैं कभी गुप्त रहते हैं सब थे भगवान के साथ में तो ये सब अपने अपने अस्त्रों को लेकर के तैयार हैं इतने आयु ध्यान जग बड़े रणचरा बलि महाराज की सेना में जो थे असुर ते सर्वे बामनम हंत शूल प्रतिष्ठा वे हाथ में ले लिए भाला शूल और पट्टिस भलुआ ले लिए मैं तुरंत मारने चलो बस बस मारो उसके बैठा है ये भी शुरू है भगवान से सहज बैर है असलों है हमारे स्वामी कितना सीधे साधे हैं इतना अच्छा से बात की और यह प्रॉपर्टी बाप बना करके सारा ध्यान ले दिया। अमित छत्र बले राजू बलि महाराज नहीं चाहते थे कि बामन देव से झगड़ा करे मार, लेकिन बिना पूछे ही अपने को अनुगामी मान करके स्वामी की सेवा करनी चाहिए। कल मैं बताया था यही असुर का विषय है। कुछ विचार नहीं था। ते सर्वे बामनम ते सर्वे सभी असुर एक मत होकर के बामन देव को मारने चाहिए। सुंद प्रतिष्ठान हाथ में ले लिए सूर्य और मालूम है बलि महाराज नहीं चाहते थे कि भगवान से अगर झगड़ा करे, लेकिन वे यज्ञ दीक्षित थे। अभी सोच ही रहे थे जिनको मना करे पर वो आ गए मानने के लिए। ये महाराज परीक्षित अपने सेनापतियों को ऐसा निर्णय वाला देखकर बलि महाराज उन्हें रोके, ए रुको, ऐसा उन्होंने कहा। बड़े प्रेम से समझाया, बड़ा उनके सामने बृहद समस्या थी। तो भगवान के बारे में यदि बोलते तो उसको तो समझने वाले नहीं, इसीलिए किसी तरह से रोके। पर वे मारने के लिए तैयार थे, वो मारने के लिए चले, तो उसी समय भगवान के सब पार्षद प्रकट हो गए और हंस करके असुरों को उन्होंने रोका अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से। सबके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, सभी पार्षद तलवार लिए रहते हैं, गदा लिए रहते हैं। उन्होंने उन असुरों को आते हुए भगवान के पास रोका, रुको और लाठी चार्ज कर दिए, लगे पीटने बहुत जोर जोर से और हाय हाय करते हुए पीछे ये क्या हुआ। भगवान के पार्षदों में बहुत बल होता है, भगवान के समान। मैं तो लाठी चार्ज कर रहा हूँ लेकिन वास्तव में ये लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। कौन कौन थे? नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक सेन और गरुण जी, ये सभी पार्षद देख रहे। जयंत सुखदेवस्था पुष्प दंतों से सात होते, जयंत सुखदेव पुष्प दंत और सातवें भगवान के सभी पार्षद सर्वे नारायण का प्राण है। सभी में दस दस हजार हाथियों का बल था, ये रहता ही है, बहुत बलशाली थी। चमुन के जब निराश हुए उन्होंने आसुरी सेना का नाश कर दिया, भगा दिया। भगवान के पास जब उन्होंने देखा तो भाग गए। हम माना सुनाओ का शोकाम दृष्टि सपने सेना को परास्त देख करके बड़े महाराज सामने जो बड़े बड़े सेनापति थे वो डरते हुए थे तो उनके नाम ले लेकर के बड़े महाराज कहने लगे उस समय बलि महाराज को याद हो गया कि हमारे गुरु ने साफ दिया है तो साफ के कारण पराय पराजय हो रही तो पुकारते हैं हे विप्रचित हे राहु राहु को राहु कहने में सुन रहा हूँ हे विप्रचित विप्रचित है का अर्थ है ब्राह्मण जिसके चित्त में हो जो ब्राह्मण को खाता रहता वो वित्त चित्त है राहू वे नैम सुतान हमारी बात को सुनो सुनो माँ युद्ध देता विरक्त धन युद्ध मत करो युद्ध से विरत हो जाओ युद्ध रोको यह काल हमारे अनुकूल नहीं है केवल काल की बात कर रहे ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हैं ससुरों को शिक्षा दी नहीं जा सकती बड़े महाराज जी नहीं कह रहे हैं कि भगवान हैं इनकी पूजा करो सब प्रणाम करो तो उनके जैसा ही बोल रहे हैं यह काल नाचक कालो अयम अर्थ के यह काल यह समय हमारे अनुकूल नहीं है हम लोगों का अर्थ साधने वाला नहीं है यह प्रभु सर्वभूता में सुख दुखों को पत्त है सुख दुख देने वाला वास्तव में काल है ऐसे काल को तुम अपने पौरुष से काल नहीं पाओगे अपने उद्यम से प्रयास से काल की गति को रोक नहीं पाओगे जो काल भगवान पहले हम लोगों का अनुकूल थे और देवताओं के प्रतिकूल वही काल भगवान अब देवताओं के अनुकूल हो रहे दैत्य ने कहा कि फिर भी प्रयास तो करना चाहिए बलि महाराज समझाए बहुत सुंदर नीति है बलेना सचिवय बुद्धिया दुर्मंत्र दुर्गा मंत्र सुधा देवी सामाधि उपाय सत्कारम अत्युत्तम काल का अतिक्रमण किसी भी उपाय से नहीं हो सकता बले न बहुत बड़ा भौतिक बल हो या सेना हो इससे काल पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता सचिव बहुत से मंत्री हों और एक से बुद्धि देने वाले मंत्री लेकिन मंत्रियों के बल से काल को हराया नहीं जा सकता विद्या या बहुत पढ़ाई लिखाई से बुद्धि से काल के चाल को रोका नहीं जा सकता फोर्ट बनाकर किला बना करके विजय में रखने रहे सुरक्षित रहना चाहिए बच नहीं सकता मंत्र है और किसी भी मंत्र से काल को रोका नहीं जा सकता जैसे कोई मंत्र होता है सांप को वश में कर लेता है देवता भी मंत्र के वश में रहते लेकिन काल मंत्र के वश में नहीं किसी दवाई के बस में नहीं है काल। काल जो करना चाहता है वो ही रहता है, किसी दवा से काल को टला नहीं दे सकता। ये देखा गया है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बने रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं, काल नहीं चाहता है, नहीं बच सकता। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है। काल से कोई बलवान नहीं, काल सभी का स्वामी है। किसी को दुख देना और सुख देना काल के लिए, समय पर सुख मिलता है, समय पर दुख। यही काल जो एक बार जन्म देता है, यही मार देता है। तो काल की चाल का अतिक्रमण करना वह संभव है, और वही काल यहाँ सामने उपस्थित है। ऐसे भगवान पर दिखा के नहीं कर रहे, वही काल हमारे विपरीत हो गया है। एक काल में तो यही काला कृष्ण अब विपरीत हो गया है। नीति द्वारा अश्रों को समझा रहे हैं और यह कह कह दे कि यही हमारे सुखदेव हैं, इनको सब लोग प्रणाम करो, पूजा करो। तो वो समझेंगे नहीं, यही समझेंगे कि बड़ी पागल हो गए। इसीलिए भगवान की महिमा नहीं बताया, काल की महिमा होता है। काल भगवान की इच्छा है। देखो ऐसा समय आ गया, यही देवता है जिनको हम लोगों ने बहुत बार जीता है, क्योंकि काल हमारे अनुकूल था। और यही देवता इस समय ऐसे गरज रहे हैं जैसे शेर गरजता है, सिंह बने हुए और मार रहे हैं, क्योंकि काल इनके अनुकूल हो गया, हमारे प्रतिकूल है। तो इसलिए युद्ध मत करो, जब समय अनुकूल होगा तब हम भी जीत जाएंगे, तो प्रतीक्षा करो। सबसे बड़ा दैव है, जो दैव मतलब ईश्वर, देव की इच्छा। हमारे भाग में हारना लिखा है तो हार गए, भाग लौटेगा तो फिर हम जीत जाएंगे। चेतन मन विजय श्यामल गरीब दैवम पशु पति, जब हमारा भाग लौटेगा अनुकूल होगा तो हम इनको जीत लेंगे। तस्मात् कालम प्रतीक्षा योनो अथवा फल करो, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा, जब भाग लौटेगा तब हम जीतेंगे। यही बड़ी महाराज भाग की बात बताओ।
भक्तों से विनती है, कृपया बैठिए, महाराज जी कथा अमृत का पान करा रहे हैं, आम से भी खड़े हो रहे हैं, कृपया समय से विनती है।
तो केवल भाग्य अभाग्य की बात कर करके समझा रहे हैं, युद्ध मत करो, अभी समय ठीक नहीं है। जब ठीक समय आएगा, हमारा भाग लौटेगा तब हम जीतेंगे। बलि महाराज परम भक्त है, लेकिन भक्त होने के बाद भी सभी को खास करके असुरों को समझाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। इसीलिए प्रारब्ध की बात कहकर, भाग्य की बात कहकर समझाया। बड़ी महाराज की बात सुन करके सभी दैत्य वहाँ से भाग गए, सीधे भागे, स्वर्ग छोड़ करके भागे। बस भागे भागे एक भागे में पताल लग चले, स्वर्ग खाली हो गया। जो स्वर्ग में जमे हुए थे उस स्वर्ग को छोड़ करके भाग, भगवान के पार्षदों की मार खाकर विष्णु पार्षद पा देता। तो श्री भगवान की इच्छा जान करके गुरु जी, भगवान ने इशारा किया होगा तो जैसे उनकी इच्छा को जान करके गुरु जी बड़ी महाराज को बांध दिए, निश्चित करवा करके हाथ पीछे करके बांध दिए। भगवान ने आदेश दिया कि इसको अरेस्ट करो, बंदी करो, बांध दो। अथक ताप से चित्तौड़ जाता विराट प्रभु चिकित्सिका गोबंध बारण का गरुण सोते हैं। यज्ञ में जब सूर्य सुनने का समय आया उसी समय बलि महाराज को बांध दिया गया, गुरु जी ने बांधा वरुण पास से। वरुण पास मतलब वरुण देवता का पास बहुत मजबूत है, उसी पास से बलि को बांध दिया। जब बलि को बांधा गया उस समय हाहाकारों महानाश, सब जगह हाहाकार होने लगा, स्वर्ग में पताल में सब जगह हाहाकार। तब इतने बड़े महान पुरुष को भक्त को भगवान ने बांध दिया, बंदी बना लिया। ये बलि महाराज के दुर्दशा के विषय में महाराज परीक्षित ने खुद प्रश्न किया, जो व्यक्ति दान दे दिया पूरे मंडल को फिर भी उससे बांधा गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान क्यों बांधे। तो यह दंड नहीं है, यह पुरस्कार से भी बढ़कर भगवान परम शक्तिशाली हैं, वे बांध रहे हैं। उसके साथ भगवान परम करुण भी हैं, दयालु। उस समय बलि महाराज बांध करके गिरा दिए हैं, तब श्री भगवान ऊपर से डांटने लगे, पदानी त्रिणी दत्ता ने हमने महलम करा के, अरे असुर तुमने तीन पग भूमि हमें दान में दिया तो तुम तो देखे तुम्हारे सामने ही द्वाभ्याम शरमता महीम सरदार, दो पद में ही हमने सारा जगत नाप लिया, तृतीय में पकड़ पड़ा तो तीसरे पैर के लिए क्या स्थान है, दो ये क्या हुआ कर।
हरे कृष्ण माता जी मुझे मानते हैं कि मैं दो मिनट बैठ जाइए महाराज जी कथा सुनाए।
तपति अशोक जहाँ तक सूर्य तपाते हैं, जहाँ तक सूर्य प्रकाश जाते हैं, जहाँ तक चंद्रमा तारा मंडल के साथ प्रकाश देते हैं। जहाँ तक मेघ वर्षा करते हैं वहाँ तक सब तुम्हारी भूमि थी, सबको मैंने नाप लिया, बदल के नया कर एक पैर से मैंने भूलों का नाप लिया, खून तक दिशा और हमारे शरीर से सारी दिशाएं भर गए, हमारा विशाल शरीर सारे संसार में छा गया। और दूसरे पैर तुम्हारे देखते देखते मैंने स्वर्ग लोक को नाप लिया, ब्रह्म लोक को नाप लिया, प्रतिज्ञा करके वचन देकर के तुम दान नहीं दे पाओ, नहीं दिए तो निश्चित है कि निरय वास इससे तुम नरक में गिरोगे, तुम नरक में गिरो, गुरु ने तुमको कहानी है तुम नरक में गिरो, वृथा तुम्हारा मनोरथ है, स्वर्ग में जाने का स्वर्ग प्राप्त करने का तुम्हारा मनोरथ मिथ्या है। तुमने वचन दे करके मुझे दान नहीं दिया है, उल्टे हमको ठगा है, तो तुम नरक में गिरोगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्री भगवान ठगे नहीं गए थे और बड़ी महाराज ठगे भी नहीं, लेकिन कह रहे हैं तुम नरक में गिरोगे। तो भगवान के कहने का आशय है नरक के पास ही शीतल लोक है, नीचे शीतल लोक नीचे है, नरक नीचे है, तो तुम नरक में जाओगे मतलब शीतल लोक जाओगे। बड़ी महाराज इस प्रकार से भगवान के बातें सुनकर अपने कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपने मेरा ले लिया पर मुझको नहीं दिया, तो तृतीय पैर को आप हमारे शिव कर रहे थे। प्रति बड़े तुष्ट हैं, लेकिन ऊपर से तर्क झटका गया, तुम्हें दान नहीं दिया, कहाँ है तीसरे पर्व, कहाँ रखे कहाँ रखे, तो बड़ी महिलाओं ने कह दिया हमारे सिर पर रखे। ये प्रसंग कल कहा गया, कल 22वें अध्याय को पूरा किया गया और परसों 23वें अध्याय भगवान की कथा पूरी हो। जय श्री कृष्ण।